नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शिमला में कल से। मुख्यमंत्री 21 मार्च को पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की बजट में की गई दर्जनों घोषणाएं कागजों तक सीमित। 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी सरकार पूरी नहीं कर पाई बजट में घोषित योजनाएं। राज्य सरकार ने ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए जारी किए 500 करोड़ रुपए। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व अनेक भागों में वर्षा से लौटी ठंड, किसानों व बागवानों के चेहरे खिले। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शिमला में शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 2 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
बजट सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के पहले चरण की बैठकें 16 से 18 फरवरी के बीच आयोजित की जा चुकी हैं। दूसरे चरण में 18, 19, 20 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जबकि 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। ये उनके कार्यकाल का 4th बजट होगा। अगले 3 दिनों तक बजट पर चर्चा होगी और 30 मार्च को बजट पास किया जाएगा। 31 मार्च को गैर सरकारी कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर आने वाले समय में राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश दूध खरीद पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मात्र दूध का रेट बढ़ाना नहीं है, बल्कि गांवों में युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है, ताकि गांव की आर्थिकी में सुधार आ सके। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना जिला के रक्कड़ में एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति विभाग द्वारा कार्यान्वित इस योजना के शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री का जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की बजट में की गई दर्जनों घोषणाएं कागजों तक सीमित है और 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी इन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में सुक्खू सरकार ने लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बावजूद इसके विधानसभा में बजट के दौरान घोषित योजनाओं को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अब तक 45,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज भी लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्व घाटा अनुदान को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 10 वर्षों में लगभग 18,000 करोड़ आरडीजी मिली थी। वहीं मोदी सरकार ने प्रदेश को लगभग 89,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की है। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि का सही उपयोग न करने का आरोप भी लगाया है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि 1 मार्च तक की बकाया राशि का भुगतान किया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला में बताया कि सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीर है और ठेकेदारों के लंबित भुगतान को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ कार्य कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व कई क्षेत्रों में वर्षा होने से तापमान में भारी गिरावट आई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में लगभग 4 इंच ताजा हिमपात हुआ है और समूचा जिला एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। बर्फबारी के कारण जिले की सभी सड़कें यातायात के लिए बंद है। किन्नौर जिला के छितकुल, सांगला व कल्पा में लगभग 2 इंच ताजा बर्फ गिरी है। जिले में कुछ अंदरूनी सड़क मार्गों पर आवाजाही फसलें प्रभावित हुई हैं। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी सहित भरमौर में भी बर्फ गिरने का समाचार है। वहीं कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों में बर्फबारी हुई है। हमारे कुल्लू जिला संवाददाता ने बताया कि ताजा हिमपात से पर्यटन व्यवसायी खुश हैं।
पर्यटन नगरी मनाली में बीती शाम हुई बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं। ऊपरी क्षेत्रों में हुई भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन हो गई है तथा पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मनाली पुलिस ने सोलंग स्थित बैरियर से आगे अटल टनल व लाहौल की ओर जाने वाली सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। मौसम व सड़क की स्थिति सामान्य होने पर केवल 4x4 गाड़ियों को ही आगे जाने दिया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील करते हुए कहा है कि मौसम खराब होने की स्थिति में बिना आवश्यक जाने कारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर यात्रा न करें। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
किसान व बागवान भी लंबे अंतराल के बाद हुई इस बर्फबारी और वर्षा के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं।
हमारे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो है तो आपका अप्रैल लास्ट लास्ट में आना शुरू हो जाता है बर्फ, उससे हमारे को बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि जो ना फ्लोरिंग भी शुरू हो जाता है तो इससे नुकसानदायक ही होता है। अगर आपका जो है तो लो हाइट में अगर क्या नहीं होगा तो जो आपका हाइट में उसमें नुकसानदायक ही होता है। हम तो यही चाहते हैं कि अभी जितना आ सके इस महीने में जो आपका जो है तो कत्ती मार्च से पहले पहले तो हम पूरे हिमाचल एक किन्नौर नहीं पूरे हिमाचल के लोग जो ना इससे हम जो तो बहुत ज्यादा हमारे को संतुष्टि मिलेगी।
राज्य सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। हमारे मंडी जिला संवाददाता ने बताया कि इस योजना से जिले के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो रहे हैं।
योजना के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले ऐसे दिव्यांग विद्यार्थियों को जिनकी दिव्यांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा 40% या उससे अधिक प्रमाणित है बिना किसी आय सीमा के छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पहली से पांचवी कक्षा तक 625 रुपए, छठी से आठवीं तक 750 और नौवीं दसवीं कक्षा तक 950 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रावास से रहने वाले विद्यार्थियों को इससे अधिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा जमा एक जमा दो स्नातक डिप्लोमा आईटीआई जेबीटी बीएड एलएलबी एमए एमएससी बोर्ड बीटेक एमबीबीएस और जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अलग अलग दरों पर छात्रवृत्ति दी जाती है। गांव सीओ के मनोज कुमार ने बताया कि उनकी बेटी रितिका जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है और 60% दिव्यांग है को छात्रवृत्ति मिल रही है। ऐसे ही अन्य कई लोगों ने भी हमें इस बारे में जानकारी दी। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हाईकोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है, JNNURM बसों के संचालन पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। अमर उजाला के शब्द हैं, आउटसोर्स भर्ती पर हल्फनामा ना देने पर हाईकोर्ट तलख, सरकार को जुर्माना। विशेष परिस्थिति में बिना टेंडर हो सकेंगे जल शक्ति विभाग में कार्य, शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है, विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में किए महत्वपूर्ण बदलाव। दिव्य हिमाचल ने लिखा है, जाते जाते तीन विधेयक मंजूर कर गए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण शिमला में कल से, मुख्यमंत्री 21 मार्च को पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार की बजट में की गई दर्जनों घोषणाएं कागजों तक सीमित, 3 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी सरकार पूरी नहीं कर पाई बजट में घोषित योजनाएं। राज्य सरकार ने ठेकेदारों के लंबित भुगतान की अदायगी के लिए जारी किए 500 करोड़ रुपए। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व अनेक भागों में वर्षा से लौटी ठंड, किसानों व बागवानों के चेहरे खिले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।